नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर बात करने वाले हैं, समस्याएं आज की समाधान कल के।
जी नमस्कार, ये पुस्तक जैसा आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ, ये 1988 से 1990 के दौरान लिखी गई थी और ये पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव ने तो स्वयं साहित्य को अपना ज्ञान शरीर बताया था।
अच्छा, ज्ञान शरीर?
जी हाँ, उन्होंने वसंत पंचमी 1990 को वंदनीय माताजी से कहा था कि मेरा ये ज्ञान शरीर ही मेरे बाद जीवित रहेगा और लोगों तक पहुँचेगा। उन्होंने सबसे इसे जन जन तक पहुँचाने का आग्रह भी किया था।
वाह, तो मतलब ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक दिशा निर्देश है।
हाँ बिल्कुल, भले ही इसमें कुछ बातें उस समय के संदर्भ में हों, पर जो मूल समस्याएं उठाई गई हैं और जो समाधान दिए गए हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं।
तो चलिए फिर इस ज्ञान शरीर में गहरे उतरते हैं, देखते हैं पूज्य गुरुदेव ने उस समय किन मुख्य समस्याओं की ओर इशारा किया था।
जी, शुरुआत में ही एक अहम बात कही गई है, प्रगति से पहले अवगति की रोकथाम।
मतलब विकास के नाम पर जो हम विनाश कर रहे हैं पहले उसे रोकना होगा।
एकदम सही, जैसे प्रकृति के साथ खिलवाड़। उस समय भी उन्होंने बढ़ते प्रदूषण, घटते जंगलों पर बहुत चिंता जताई थी।
और आज तो हम वो सब अपनी आंखों से देख ही रहे हैं।
बिल्कुल, उन्होंने इसे ऐसा बताया जैसे मनुष्य अपने ही भविष्य पर पत्थर बरसा रहा हो, और साथ ही अनावश्यक जनसंख्या वृद्धि को भी एक बड़ी चुनौती माना।
ये तो हुई बाहरी बातें, समाज के अंदर की समस्याओं पर भी कुछ कहा है।
हाँ हाँ बहुत कुछ, जैसे समाज में फैलता अपव्यय, चाहे वो नशे की लत हो या फैशन के नाम पर फिजूल खर्ची या फिर शादियों में होने वाला बेहिसाब दिखावा और खर्च।
अरे हाँ, ये मुद्दे तो आज भी उतने ही बल्कि शायद ज्यादा ही बढ़ गए हैं।
सही कह रहे हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण दूरदर्शी बात उठाई गई है नारी शक्ति के बारे में।
आधी आबादी यानी स्त्री, उनके बारे में क्या कहा गया?
पूज्य गुरुदेव ने सवाल उठाया कि अगर समाज की आधी शक्ति मतलब हमारी स्त्रियां, अगर वो केवल घर के कामों तक ही सीमित रह जाएं, एक तरह से अनुत्पादक बनी रहें, तो समाज पूरी तरह विकसित कैसे होगा?
मतलब उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, ये समाज के लिए एक बड़ा नुकसान है।
जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी क्षति है।
तो ये सारी समस्याएं गिनाई, पर्यावरण, जनसंख्या, फिजूल खर्ची, नारी शक्ति का अनुत्पादक रहना, पर क्या ये सब अलग अलग समस्या है या इनकी जड़ कहीं एक ही है?
बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये सब तो लक्षण हैं, असल समस्या बाहर नहीं अंदर है।
अंदर मतलब?
मतलब मनुष्य के अपने भटके हुए दृष्टिकोण में। पूज्य गुरुदेव इसे मानवीय चेतना का विभ्रम कहते हैं।
मानवीय चेतना का विभ्रम, ये थोड़ा समझाएंगे।
हाँ, इसका मतलब है कि इंसान खुद को सिर्फ ये शरीर मानने लगा है, हाड़ मांस का पुतला, और बस बाहरी चीजों, भौतिक सुख सुविधाओं को ही जीवन का सब कुछ समझ बैठा है। अपनी जो असली पहचान है, जो आत्मिक शक्ति है, उसे वो भूल गया है।
ओ, जैसे कोई शेर भेड़ों के बीच रहकर खुद को भेड़ समझने लगे।
हाँ बिल्कुल वैसा ही, अपनी असली ताकत, अपनी असीम संभावनाओं को भूल जाना ही असल में यही मूल समस्या है।
तो अगर समस्या दृष्टिकोण में है, सोच में है, तो समाधान भी वहीं से शुरू होगा।
निश्चित रूप से, पहला और सबसे जरूरी कदम है दृष्टिकोण का परिवर्तन। बाहर कुछ बदलने से पहले अंदर की सोच बदलनी होगी, अपना नजरिया बदलना होगा।
जैसे चश्मे का रंग बदल दें तो दुनिया अलग दिखने लगती है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव कहते भी थे कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी अपनी सोच, हमारी भावनाओं से ही बनते हैं।
और इस बदले हुए दृष्टिकोण को जीवन में कैसे उतारा जाए, इसके लिए कोई सूत्र?
जी, उनका प्रसिद्ध सूत्र है सादा जीवन उच्च विचार।
सावा जीवन उच्च विचार, ये सुनने में तो सरल लगता है पर इसके पीछे गहरा अर्थ है शायद।
बहुत गहरा, मतलब अनावश्यक इच्छाओं से बचना, दिखावे से दूर रहना, अमीरी का प्रदर्शन ना करना, एक औसत संतुलित जीवन जीना।
और इससे क्या होगा?
इससे जो समय बचेगा, जो पैसा, जो साधन बचेंगे, उन्हें समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी मदद में लगाया जा सकता है।
अच्छा, तो इससे समाज में बराबरी भी आएगी, विषमता कम होगी।
जी हाँ, सादगी से व्यक्तिगत शांति तो मिलती ही है, सामाजिक संतुलन भी बनता है।
समाधान की दिशा में शिक्षा की भूमिका पर भी जरूर बात हुई होगी।
हाँ बिल्कुल, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने शिक्षा और विद्या में एक बहुत स्पष्ट अंतर किया है।
शिक्षा और विद्या, ये अलग कैसे हैं?
देखिए, आजकल जो स्कूलों कॉलेजों में मिलती है, जो ज्यादातर जानकारी देती है या नौकरी पाने में मदद करती है, उसे पूज्य गुरुदेव शिक्षा कहते हैं और वो मानते थे कि ये अधूरी है।
तो फिर विद्या क्या है?
विद्या वो है जो इंसान के गुण, कर्म और स्वभाव को सुधारे, उसके व्यक्तित्व को निखारे, उसमें सही गलत की पहचान करने वाला विवेक जगाए। तो सच्ची तरक्की सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि इस विद्या के जागने से होगी।
एकदम सही।
और ये विद्या जगाने का काम सिर्फ स्कूलों का नहीं है।
तो फिर किसका है?
पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। खासकर जो मनीषी हैं, जो विचारक हैं, उन्हें ऐसी विद्या का प्रचार प्रसार करना होगा जिससे व्यक्ति भी उठे और समाज भी।
तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो ये पुस्तक हमें एक तरह से जगाती है। ये बताती है कि जो बाहरी समस्याएं दिख रही हैं, पर्यावरण हो, अर्थव्यवस्था हो या समाज की कोई और बात, उनका असली और टिकाऊ हल सिर्फ बाहरी उपायों या टेक्नोलॉजी में नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
असली बदलाव तो इंसान के अंदर लाना होगा, उसकी सोच में, उसके मूल्यों में, उसकी जीवन शैली में, है ना? जैसे पत्तों पर पानी डालने की बजाय जड़ को सींचना।
बिल्कुल सही कहा आपने, जड़ को सींचना होगा। और अंत में पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही आशा भरी तस्वीर भी सामने रखते हैं।
अच्छा, वो क्या?
उन्हें पूरा विश्वास था कि एक युग परिवर्तन जरूर होगा, एक महाक्रांति आएगी जो इंसान की सोई हुई चेतना को झकझोरेगी, उसे जगाएगी।
युग परिवर्तन, महाक्रांति, और इसे लाएगा कौन?
इसके लिए वो कहते हैं देव मानवों का अवतरण होगा।
देव मानव, ये कौन लोग होंगे?
देव मानव से उनका मतलब ऐसे लोगों से है जो खुद को सुधारने के रास्ते पर चलेंगे, अच्छी आदतों और विचारों को अपनाएंगे, उन्हें फैलाएंगे और सिर्फ खुद ऊंचे नहीं उठेंगे बल्कि अपने कामों से, अपने पुरुषार्थ से समाज को नई दिशा देंगे, धरती पर एक बेहतर स्वर्ग जैसा माहौल बनाने के लिए जुटेंगे।
ये एक संगठित सकारात्मक प्रयास होगा।
जी, संगठित और सकारात्मक प्रयास।
ये विचार कि एक ऊंची चेतना और संगठित अच्छे प्रयासों से समाज में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल।
शायद अपने स्तर पर अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करना ही उस बड़ी चेतना को जगाने की दिशा में हमारा पहला कदम हो सकता है। जैसा कि प्रकाशक ने भी पुस्तक के अंत में इन विचारों को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का आग्रह किया है।
जी, हर छोटा प्रयास मायने रखता है।